मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 4 जनवरी 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मित्रों मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं मंजू यादव, आप माजरी खुर्द राजस्थान से हैं, हर्षिका नायक न्यू दिल्ली से, विवेक कुमार फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से, अजय कुमार शर्मा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से और खुशबू यादव रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। तो मंजू, हर्षिका, विवेक, अजय और खुशबू, आप सभी 5 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के मुख्य विषय के लिए मैंने चुना है राज्यसभा को, इसके बारे में हम लोग बाद में बातें करेंगे। आइए पहले थोड़ी सी दूसरी खबरों को देख लेते हैं। न्यूज में आपने 123वें संविधान संशोधन के बारे में सुना होगा। 123वां संविधान संशोधन, बड़ा अच्छा क्रम है इसका, 1 2 3। सच पूछे तो कुछ मैंने महसूस किया है कि जब कुछ ऐसे क्रम में कोई घटना घटित होती है तो आप यूं कह लीजिए कि जनरल स्टडीज में उसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है। जैसे 100वां संविधान संशोधन, अब देखिए 100वां है, बहुत जरूरी नहीं है कि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन ही हुआ होगा 100वें में, क्योंकि वो 100वां है, नॉट एट ऑल, वो तो क्रम में जो आया वो आ गया। लेकिन फिर भी चूंकि वो 100वां है तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि विशेष ध्यान दे दिया जाना चाहिए। और इसी पर 123वां संविधान, इसी पैटर्न पर मैं इसकी बात कर रहा हूं, वैसे ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण भी है। महत्वपूर्ण इस मायने में है मित्र, आपको मालूम होना चाहिए कि 123वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है। हालांकि अभी ये लोकसभा में पेश किया गया है, अभी पारित नहीं हुआ है। जो पिछड़ा वर्ग आयोग, हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसे अभी तक संवैधानिक संस्था नहीं है, है ना। देखिए, एक संवैधानिक संस्था होती है जिसकी चर्चा संविधान में है, राइट। दूसरी संस्थाएं होती हैं जो एक्ट के माध्यम से बनाई जाती हैं, अधिनियम कानून के माध्यम से बनाई जाती हैं। लेकिन जो संस्था संविधान में स्थान पा लेती है, जो संवैधानिक संस्थान होते हैं, उनका बहुत ज्यादा महत्व होता है, मतलब यूं कह लीजिए कि उनका स्टेटस बहुत बढ़ जाता है। तो अभी तक जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, देखिए ये तो बाद में ही पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन मिला है, आपको मालूम है कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर हो गए थे उसके बाद ही मिला है। जहां तक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का है तो ये तो इनको तो शुरू से ही आरक्षण भी मिला हुआ है, और इनसे संबंधित जो आयोग है उनको बकायदे संविधान में स्थान भी है, दिया गया है, लेकिन इसका नहीं था। आयोग बना दिया गया था लेकिन ये संविधिक आयोग था, संवैधानिक आयोग नहीं था। और अब जो संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है उसमें यही व्यवस्था की गई है कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि जब कैबिनेट ने इसके बारे में फैसला किया था कि वह पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देगी, उस समय इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात की थी और बताया था कि इसका गठन कब हुआ, इसके क्या क्या काम है, इसका क्या क्या स्ट्रक्चर है। इसलिए मैं अब फिलहाल इसके बारे में ज्यादा बातें करना ठीक नहीं समझ रहा हूं, लेकिन हां, जब विधेयक पारित हो जाएगा उस समय अगर दूसरे कोई बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं हुई दूसरी, तब फिर हम इस पर बातें करेंगे। अदरवाइज मैं फिलहाल अभी आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि यह एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक है और आपका ध्यान इस पर होना चाहिए। दूसरी जो खबर है आज के अखबारों में, फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि H1B वीजा को लेकर के आज अखबारों में खबरें भी हैं और कुछ एडिटोरियल कमेंट भी इस पर किए गए हैं, और इस पर जो एडिटोरियल कमेंट किए गए हैं वह मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं। इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं इसलिए मैं उसे रिपीट करके बेकार दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये जरूर बताना चाहूंगा कि यह भी एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसका जो संबंध है वो 2 बातों से है। इनफैक्ट पहला तो यह कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो अमेरिका जाते हैं, सर्विस करते हैं, वो इसी वीजा के तहत ही जाते हैं। अब ट्रंप प्रशासन ने उस पर रोक लगाने की बात कही है, बहुत पहले से बात चल रही है। तो ऐसी स्थिति में होगा ये कि यहां से जाने वाले इंजीनियर्स की संख्या कम हो जाएगी, और जो ज्यादा खतरनाक बात है, कहा यह जा रहा है कि अगर वो व्यवस्था कर दी गई अमेरिका में, तो वहां जो ऑलरेडी हमारे इंजीनियर हैं, तो लगभग 50,000 से 75,000 इंजीनियर्स को हमारे देश लौटना पड़ेगा। और आप जान रहे हैं कि खुद जो इंजीनियर्स हैं भारत में, संख्या ज्यादा हो गई है, सर्विस की प्रॉब्लम हो रही है, और अगर अमेरिका से 50,000 से 75,000 इंजीनियर्स वापस देश में आ गए, तो डेफिनेटली इसका एक नकारात्मक प्रभाव भारतीय व्यवस्था पर पड़ेगा। दूसरा इसका जो पक्ष है, पहला पक्ष तो भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, जो दूसरा पक्ष है मित्रों, वो कहीं ना कहीं सच पूछे तो वैश्वीकरण से भी है। देखिए, वैश्वीकरण का मतलब ही था कि चाहे वो संसाधन हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे पूंजी हो, उद्योग हो, वस्तु हो, इन सबकी मुक्त आवाजाही, कि जहां भी सस्ता मिल रहा है आप दुनिया के वहां से, उस जगह से अपना सामान मंगा लीजिए, और जहां भी आप जाना चाहें जाकर के नौकरी कर लीजिए, वहां रहिए और आ जाइए। मुक्त आवागमन ही था, यही वैश्वीकरण था, कि पूरी दुनिया को एक बना दिया जाए। आप देख रहे हैं कि दो घटनाएं इस बीच में बहुत ही जबरदस्त हुई। एक तो इंग्लैंड ने कहा कि हम यूरोपीय कम्युनिटी समुदाय में नहीं रहेंगे, तो वो एक तरीके से वैश्वीकरण के खिलाफ उठाया गया एक जबरदस्त कदम था कि आप यूरोपीय समुदाय में ही नहीं रहना चाह रहे हैं, फिर तो दुनिया में रहने का क्या सवाल ही नहीं उठता है। इसके बाद जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, तब से उन्होंने अमेरिका अमरीकियों के लिए जो नारा दिया है, उसके तहत भी अब अमेरिका इस तरह के कदम उठा रहा है, जो हमने अभी H-1B वीजा के तहत बात की कि नहीं, अमेरिका अमेरिकियों के लिए है, तो सबसे पहला जो कुछ भी होगा वो अमेरिकन्स के लिए होगा, और बाद में जो कुछ बचेगा वो दूसरों के लिए होगा। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के मूल सिद्धांत के खिलाफ बात दिखाई दे रही होगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस अमेरिका की H-1B वीजा नीति से जुड़ी हुई है, और मैं चाहूंगा कि इस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इसलिए क्योंकि जो वैश्वीकरण का जो टॉपिक है, हर साल आप देखिए मेंस में इस पर पूछा ही पूछा गया है, एक दो प्रश्न आते ही आते हैं। तो डेफिनेटली जो सिद्धांत है, जो व्यवस्थाएं हैं इसके, वो तो सब चीजें स्थायी हैं, वो आपको मालूम है, लेकिन इसके स्वरूप में जो परिवर्तन हो रहा है, या यूं कह लीजिए कि इसको जो चुनौतियां मिल रही हैं, उन पर आपका ध्यान होना चाहिए, ताकि यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप जो तात्कालिक स्थितियां हैं उनको आधार बनाकर अपना उत्तर लिख सकें, और ये सिविल सर्विस की बहुत बड़ी जरूरत भी होती है। मित्रों, एक जो छोटी सी खबर है, वो खासकर बहुत ही छोटी सी खबर है, सिविल सर्विस में तो इस तरह के प्रश्नों की संभावना नहीं के बराबर होती है, लेकिन फिर भी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। श्रीनगर लेह मार्ग पर अभी जो सुरंग की जो अनुमति दी गई है, वो जोजिला सुरंग है, थोड़ा सा नाम याद रख लेंगे कि जो जोजिला सुरंग है ये किन को एक दूसरे से जोड़ेगी, वो श्रीनगर और लेह मार्ग पर ये सुरंग बनेगी। मित्रों, अब मैं आता हूं राज्यसभा पर। देखिए, राज्यसभा के विषय को मैंने इसलिए चुना है, पहली बात तो यही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, ये संसद का हिस्सा है राज्यसभा, और राज्यसभा को लेकर के हमेशा एक तरह से कह लीजिए आलोचना विवेचना की स्थिति बनी रहती है। कोई कहता है राज्यसभा को खत्म ही कर देना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है, कोई कहते हैं कि नहीं, राज्यसभा को और अधिकार दिए जाने चाहिए, मतलब अलग अलग मुद्दों को लेकर के बातचीत होती रहती है। तो ये बहुत ही हॉट टॉपिक लगभग बना रहता है, जैसे गवर्नर का पद बना रहता है ना, राज्यपाल का पद, लगभग वही स्थिति राज्यसभा की होती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती है। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे बहुत इंपॉर्टेंट समझे राज्यसभा को। अभी देखिए दो बातें महत्वपूर्ण हैं जिनके कारण मैंने इस विषय को चुना है, ताकि आप अपने को अपडेट कर सकें। पहली बात यह है कि कल जो आम आदमी पार्टी है, उसने राज्यसभा के में भेजने के लिए तीन लोगों के नाम डिक्लेयर किए हैं, इसमें उसमें से एक तो उनकी अपनी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, और दो जो हैं वो दिल्ली के ही बिजनेसमैन, तो एक उसमें बिजनेसमैन है, दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, राइट। ये दोनों आम आदमी पार्टी के से जुड़े हुए नहीं है, उनके आम कार्यकर्ता नहीं है। इसको लेकर के पूरे देश में एक तरह की बेचैनी सी है, या कह लीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, बेचैनी तो नहीं कहना चाहिए, लोगों के दिमाग में अब अलग अलग तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि भाई उन दो व्यक्तियों को, एक कार्यकर्ता है, उनको तो चुना गया, वो बहुत ही जायज है, लेकिन जो दो लोग हैं जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको क्यों चुना गया, उसके पीछे क्या कारण है। तो दिमाग में अलग अलग तरह के संदेह आ रहे हैं और उस पर टीवी चैनल्स पर डिस्कशंस भी आ रहे हैं और डेफिनेटली अखबारों में भी मुझे लगता है कि उस पर बातें होंगी। तो पहला तो यह है, इसके आधार पर जो बात उठ रही है वो है कि जो राज्यसभा है, देखिए राज्यसभा उच्च सदन है और उसे एक प्रकार से एक उच्च स्तर के बौद्धिक विमर्श का केंद्र बनाया जाना चाहिए। लोकसभा में तो पब्लिक से सीधे चुन करके आते हैं हमारे जो प्रतिनिधि हैं, ठीक है, तो उसमें कोई भी प्रतिनिधि जिसको भी अपने क्षेत्र में लोकप्रियता प्राप्त हो चुनकर आ सकता है। राज्यसभा क्यों बनाया गया, इसके पीछे उद्देश्य ही यही था कि यहां जो बहुत ही बौद्धिक दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से या कार्य की दृष्टि से जो बहुत ही प्रतिष्ठित लोग होंगे, जो जिनकी उपलब्धियां होंगी या जिनकी जनता के बीच में एक तरीके से सम्मान की दृष्टि से देखा जाता होगा, अलग अलग जीवन के क्षेत्रों के जिनके पास अच्छे अनुभव होंगे, वे सब राज्यसभा में पहुंचेंगे और लोकसभा से जो विधेयक पारित होंगे या कह लीजिए कि जो राज्यसभा में पहली बार प्रस्तुति होंगी, उन पर फिर एक बौद्धिक विमर्श होगा, एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होगा, ताकि जो कानून पारित हो वो देश के ज्यादातर हित में हो। देश अब हो क्या रहा है कि धीरे धीरे राज्यसभा का यह जो स्वरूप है वो थोड़ा सा धूमिल पड़ता जा रहा है। ऐसे लोग जिनको एडजस्ट करना है आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके राज्यसभा में भेज देते, इसलिए कहा जाने लगा कि ये बैकडोर एंट्री है, संसद में पहुंचने का एक पिछड़ा दरवाजा है कि आप पीछे के दरवाजे से आ जाइए, क्योंकि उनका चुनाव जनता के बीच से तो होता नहीं है। दूसरा यह भी सवाल उठने लगा है कि क्या धन के बल पर भी राज्यसभा में पहुंचा जा सकता है। किसी के पास बहुत पैसा है, वो पार्टी से बात करता है कि मैं आपको इतना पैसा देता हूं, आप मुझे राज्यसभा का सदस्य बना दीजिए। इससे पहले इस तरह की कुछ घटनाएं घटी और उन पर खूब बहस भी हुई जब कुछ बहुत ही पैसे वाले लोगों को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। तो ऐसे में राज्यसभा की जो प्रतिष्ठा है डेफिनेटली उस पर प्रश्न उठने लगे हैं। ये पहली घटना है। जो दूसरी घटना है, अब आपने न्यूज में भी सुना होगा, चैनल्स पर भी ये बात आई है कि जो मुस्लिम महिलाओं को जो तलाक से संबंधित जो विधेयक था वो लोकसभा ने पारित कर दिया, अब वो राज्यसभा में गया है और राज्यसभा में कल कुछ विपक्षी जो दल थे उन लोगों ने इसे प्रवर समिति को भेजने के बारे में प्रश्न उठाया है। देखिए सीधी सी बात है कि अगर राज्यसभा से विधेयक पारित नहीं हो पाएगा तो कानून नहीं बनेगा, और आप प्रवर समिति को भेज देंगे, फिर प्रवर समिति क्या सुझाती है और वो कितना वक्त लगता है वो फिर एक अलग मुद्दा है। दूसरा जो प्रश्न उठता है राज्यसभा को लेकर के वो ये है कि जो सही सदन है, जो जनता का जो सदन है, वो तो लोकसभा है, क्योंकि चुनकर के जनता ने जिन लोगों को भेजा है वो लोकसभा में बैठ रहे हैं। तो लोकसभा जिस विधेयक को पारित कर देती है तो राज्यसभा उस विधेयक को कैसे रोक सकती है, उसे नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि जो जन आकांक्षा है उसका सही प्रतिनिधित्व लोकसभा कर रही है। तो राज्यसभा में बेसिकली जहां उस पर अच्छी बहस होनी चाहिए, एक स्वस्थ बहस होनी चाहिए, उसकी बजाय राज्यसभा में इस पर राजनीति होने लगती है। जरूरी नहीं अब हम पॉलिटिक्स के उस स्टेज पर आ गए हैं कि जिस पार्टी का लोकसभा में बहुमत होगा, देखिए लोकसभा में तो वही सरकार बना पाएगा जिसका बहुमत होगा, चाहे वो एक पार्टी का बहुमत हो या कई पार्टियों ने मिलकर के एक दल बना लिया हो सरकार बनाने के लिए, लेकिन उनका बहुमत होगा। तो लोकसभा में तो अगर सरकार कोई बिल पेश कर रही है तो उसके पारित होने में कोई डाउट ही नहीं होता है, अगर पारित नहीं होगा तो सरकार ही गिर जाएगी। लेकिन राज्यसभा के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। जीएसटी बिल में भी आपने देखा होगा, गुड एंड सर्विसेज टैक्स में, आपको याद होगा कि राज्यसभा में उसे पारित कराने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, क्योंकि राज्यसभा में अभी सरकार का बहुमत नहीं है। तो इस तरीके से यह भी माना जाने लगा है तो फिर तो राज्यसभा जो जन आकांक्षा है उसके विरोध में भी काम कर रही है, तो यह कहा जाने लगा कि फिर राज्यसभा की जरूरत ही नहीं है। और ब्रिटेन की संसद ने ऐसा किया भी है, उसने एक समय निश्चित कर दिया है कि राज्यसभा उस पर विचार विमर्श करेगी और अगर वो उसे पारित नहीं करती है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसे पारित ही मान लिया जाएगा। जैसे धन विधेयक पर राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है मनी बिल पर, लगभग वही बातें दूसरे विधेयकों के बारे में भी वही व्यवस्था कर दी गई है ब्रिटेन में। और हमारा जो संविधान है उसका जो मेजर पोर्शन है वो ब्रिटेन से ही लिया गया है। तो मित्रों इसलिए अब ये सवाल उठने लगा है कि राज्यसभा हो ही न तो क्या हर्ज है, या उसके अधिकारों को बहुत कम कर दिया जाए। हालांकि राज्यसभा की अपनी आवश्यकता है और हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये सारी बातें हो रही हैं तो राज्यसभा को खत्म कर दिया जाना चाहिए। हाँ उसमें अगर सुधार की जरूरत है नई आवश्यकताओं के अनुसार तो उसके लिए कोशिश की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनका स्टैंड यही होना चाहिए कि उसे समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। तो मित्रों आज के मुख्य विषय के बारे में इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है आप सबको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और आप में से ही कुछ मित्रों के नाम हैं परमवीर प्रतीक, पारस सिंह, संजीत कुमार साहा पश्चिम बंगाल, रणवीर तिवारी, शोभिता जैन सागर मध्य प्रदेश, हिमांशु दमोह मध्य प्रदेश और सूरज कुमार। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।